بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کو روحانی ترقی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اگر صبح اور شام کی مجلس پر استقامت نصیب ہو جائے اللہ کے ذکر کی، تو اس کے بعد پھر کسی بھی مجاہدے اور مصیبتوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی استقامت پر صبح و شام کی مجلس پر اچھی نئی سالانیت کے ساتھ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی راستے پر انسان کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. یہ صبح کی مجلس ذکر کی، کیونکہ یہ اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. خود اللہ کا نام ہو، اللہ کا ذکر ہو، کوئی تغیر وغیرہ نہ ہو، کچھ نہیں، ذکر اللہ کی مجلس خالص. اس مجلس میں انسان پوری زندگی استقامت نصیب فرمائے. استقامت کہتے ہیں کہ بغیر کسی ریزن یا وجہ کے اس مجلس کو نہ چھوڑے. کوئی ریزن ہو جاتی ہے، جیسے ہاسپٹل میں اپائنمنٹ ہے، یا کوئی طبیعت خراب ہے، یا بیمار ہیں، یا کسی مجبور شاید میں لیٹ ہو گیا، یہ استقامت میں ہی آتا ہے. استقامت میں آتا ہے. استقامت کا ٹوٹنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کسی سستی کے چلو یار کیا جانا پتھر خیر ہے تو وہ استقامت کے خلاف رہتا. اسی لیے بزرگان نے فرمایا استقامت فوق الکرامت ہے. کوئی آدمی ہوا میں اڑا ہے اور بڑی بڑی کرامتیں دکھا رہا ہے، اس کے مقابلے ایک شخص ہے جو مستقل طور پر ایک عمل کر رہا ہے، اسی عمل پہ جمع ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ افسر ہے جو اس کام پر کر رہا ہے. تو جو نزدیک ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے پہ پہنچا دیتا ہے، منزل عطا فرما دیتا ہے. بس ہم اس پہ سستی کر جاتے ہیں، بہت سے وظائف اختیار کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ یہ وظیفے کر لیں، وہ وظیفے کر لیں، فلاں وظیفے کر لیں. کچھ بھی نہیں ہے، بس نفس کو کنٹرول کرنا ہے. نفس جو مرتا ہے وہ کنٹرول سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس چیز کو اس کو چیخیں نکلتی ہیں. نفس کی استقامت سے بہت چیخیں نکلتی ہیں اس کی. بزرگان دین نفل عبادت کو کیوں نہیں دیتے جلدی؟ شوق تو بڑا ہوتا ہے، میں فلاں روزہ رکھوں، ایام بیعت کے روزے رکھوں، منگل کے روزے رکھوں، الحمدللہ اچھا شوق ہے، اخیر سے. لیکن اگر اس پہ استقامت نہیں کی تو وہ نقصان دہ چیز بن جاتی ہے انسان کے لیے. تھوڑا ہو، ہمیشہ ہو، بس یہ نہیں کہ زیادہ ہو اور بس تو کچھ دن کے لیے ہو. وہ تو ایسے ہی جیسے آپ ایک ہی دفعہ سارا کھانا کھا لیں پیٹ خراب ہو جائے گا، لیکن آرام آرام سے کھائیں گے تھوڑا تھوڑا تو پیٹ بھی صحیح رہے گا اور جسم بھی مضبوط ہوتا ہے آدمی کا. استقامت سے انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے. تھوڑا تھوڑا کریں گے، پابندی کے ساتھ کرے، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے انسان کو مجلس نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس پہ وقت آ ہوا ہے، بیٹھ جائے، جتنی اللہ توفیق دے اس مجلس میں شامل ہو. میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ اس استقامت پر انسان کی بڑی بڑی بیماری نکل جاتی ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی. یہ جسمانی بیماری انسان آڑے آتے ہیں، ہمت کر کے اگر اس میں انسان پہنچنے کی کوشش کریں تو اللہ اس بیماری کو بھی دور کر دیتا ہے. یہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ جانتا ہے اپنے بندے کی محبت کو، وہ قدر کرتا ہے ہر چیز کی. سب سے بڑا قدردان تو اللہ تعالیٰ ہے انسان کے اعمال پہ. وہ تو چھوٹی سی چیز کی بہت قدر کرتا ہے انسان. چھوٹی بھی انسان اخلاق کے ساتھ اللہ کے لیے کام کر دے تو اس کے دروازے کھل جاتے ہیں رحمت کے اس کے لیے. میں نے زندگی بھر اپنے شیخ سے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ اور وظیفہ دیں، اور اس کے بعد کیا کروں، اور کوئی وظیفہ دیں، یہ کروں، فلاں کروں، کچھ نہیں، کبھی مطالبہ نہیں کیا احساس سے. میں نے بس جو دیا اس پہ بہت پابندی سے استقامت اختیار کی، اس پر یہی کافی میرے لیے الحمد للہ. اسی کو پابندی کے ساتھ کیجیے. تو یہ چیز حضرت کو بہت پسند آئی، بہت الحمد للہ. خود ہی نیت فرماتے رہتے تھے بیچ چیزیں. खुद मिल जाए वो बहुत अच्छी चीज है, मांग के लिए जाए वो हरी से लाल चाहिए, जमा करने का शौक उसको वजीफे वजीफ पढ़ लूँ, फला पढ़ लूँ, इतनी दसवीं कर लूँ, उससे पूरी नहीं होती ये चीज़ें सारी जिंदगी में, क्योंकि इंसान की जिंदगी में जरूरियात जिंदगी है, हकूक है सबके, बीवी के, बच्चों के, घर के, नफ्स के भी हकूक, उसको आराम दें। हमेशा सोचें जब जिक्र में आने से पहले इस्तराहत हो, आराम हो। कितनी प्यारी सुनत है नबी पाकसम की, ये दो रकात नफिल पढ़ सुनतें पढ़ते थे घर पर, पढ़ने के बाद आप वहीं पर आराम फरमाते थे, थोड़ी देर दाएं साइड पे रख लेते थे चेहरे मुबारक के नीचे, और उस पर मुसल्ली पे लेट जाते थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फ्रेश हो रहे हैं साथ की इबादत के बाद। वो तीन चार मिनट का कलूला इतना फ्रेश कर देता था कि आप आके फजर में बैठते थे मजा। तो ये नहीं हम सुनत है, फर्श होता है आदमी, मतलब आप उठे तहजद के लिए वज़ाइफ लिए हैं तो आप फजर पर जाना, जैसे आप नफिल पढ़े ऐसी उसी कलर पर लेट जाए राइट साइड पर थोड़ी देर, ऐसी हल्की सी गनूदगी आएगी आपको, खलाटे नहीं आएंगे, आँखें जागते थे इंशाल्लाह। तीन मिनट के अंदर आप उसके लेटने के बाद, मैं उसका एक और आसान तरीका बताता हूँ, उसको भी ज़ाया ना करें, कितनी देर लेटना है। लेटने के बाद दुरूद इब्राहिमी तीन दफ़ा पढ़ लें बस, अल्हम्दुलिल्लाह, आँख बंद करके उसके बाद उठ जाए, फ्रेश हो जाए बिल्कुल आदमी फ्रेश, माशाल्लाह अगली बात आपके लिए फ्रेश हो जाता है। और इसमें इतनी बरकतें हैं, इस अमल के अंदर आप हैरान हो जाएंगे, इतना बरकत है। कुछ लोग अमल को सही समझते नहीं तो गलत तरीके से करते, जैसे मैंने आपको बताया कुछ हमारे साथी थे बेचारे, वो समझेगा भाई सुनते पढ़ने के बाद ये काम कर ले आते, तो उन्होंने मस्जिद में शुरू कर दिया पहली सब सुनते पढ़ने के बाद वहीं लेट जाते, इससे ये खिलाफ अदब है। ये सुनती है कि घर में सुनते अदा करने के बाद ये अमल करें, ये नहीं मस्जिद में आकर लेट दें, कहते ये क्या हुआ उसको, शायद बीमार हो गया एकदम, आपकी सुनती नहीं है। सुनती है कि घर में सुनते अदा करने के बाद फिर उसी आपने मुसल्ले पर बैंकों पर लेट जाने, ये सुनते है। ये नहीं जहाँ भी आप सुनते पढ़ें मस्जिद में ख़ास तौर पर पढ़ रहे हैं, फिर खिलाफ सुनत बात है कि आप घर से पढ़ के आए सुनत हैं तो वहाँ पे आप ये सुनत अदा करो, वहीं लेट जाए लोग फिर तकबर भी करते आ जाएंगे, भी मैं सुनत अदा कर रहा हूँ, हंस रहे हैं आप लोग, शर्म नहीं आती हदीस है इस पर, तो ये बातें गलत है। किसी मसले को आराम से सुन लिया कि समझ नहीं आए तो फिर पूछ लें हजरत ये अमल में सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, कोई शर्मानी बात नहीं, आपने फरमाया था ये अमल करना है तो इसके अमल की मुझे इजाज़त है, और ये मैं अमल सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ये है तरीका तसव्वुफ का। अमल सुनने के बावजूद भी वाला शेख बता रहे आपको, तो फिर भी उसकी तरफ रजू करके उस अमल के बारे में मज़ीद तहकीक करें, जैसे अमल शुरू कर दूँ मैं इस तरीके से करना है, फिर शुरू करें उस अमल को। एक चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए वज़ाइफ में कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है कभी शेख तब्दील करना पड़ता है, ये खिलाफ तरीक नहीं है, तरीकत के खिलाफ नहीं है शेख तब्दील करना, क्योंकि मकसूद अल्लाह है, अल्लाह को पाना है, जहाँ इंसान को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ आप शेख बनाना उससे फ़ायदा लें, लेकिन जो आपका पहला शेख है जिसके पास पर गए आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको उससे कोई रूहानी तरक्की महसूस नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी, तो कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला ने कहीं इंसान को कहीं रखा होता है, किसी मुकाम को कहीं रखा होता है, अच्छे होंगे वो बुजुर्ग भी, लेकिन वो आपको उतना फ़ायदा नहीं पहुँचा सके। बाज़ औक़ात होता है इंसान को जगहें तब्दील करनी पड़ती हैं, एक आजकल तो हिजरतें आम है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक शहर में दूसरे शहर में, तो अपने उस चक्कर में कि मेरे शेख वहाँ है वो अपनी सारी सलाहियतों को ख़त्म कर देता है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, नहीं ये हमारा शेख तो वहाँ है, हमारा शेख तो उसमें सारी बुराइयाँ जो होती हैं जन्म करना शुरू हो जाती हैं दोबारा। उस शेख का मतलब है सोहबत शेख, कि जब आप ना उसकी ज़ियारत कर रहे हैं ना बैठ रहे हैं सोहबत शेख, तो सिर्फ शेख को एक दफ़ा नमाज में देख लेना भी सोहबत होती है। ये नहीं घंटे बैठे हैं आप उसके सामने, उसको बोर कर रहे हैं, खुद भी बोर हो, दिमाग चाट रहे हैं उसका, आप उसको सोते नहीं है, हल्की सी जाती है। सावा अंदाज यही था। सबसे शेख तो ये कि अल्लाह ताला ने शेख के अंदर तो ये कैफियत रखी होती है कि उसकी हर चीज़ मरीज जो है फ़ायदा उठाया था, उसको उसकी मोहब्बत है, जज्ब कर लेता है उसकी हर चीज़ को अपनी मोहब्बत से। शेख देता नहीं, मरीज को लेना पड़ता है। शेख क्या देना, मरीज को लेना पड़ता है अपनी मोहब्बत के साथ, उसको जज्ब करे, उसके अंदर से सारी चीज़ें चूसे, उसको अल्हम्दुलिल्लाह फिल्टर कर ले सारी चीज़ें शेख के अंदर, है ना, खींच ले सारी चीज़ें। अबू बकर सद्दीक ने खींची सारी चीज़ें, नहीं पाओ वाकई खींचता है ये तो। तो ये जो शेख हमारे तो असमी नक्शबंदी सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें यह है कि अगर आदमी कहीं दूर है, इधर उधर है, और नहीं है शेख के सोच नहीं मिलने, इसमें कोई हर्ज नहीं कि किसी दूसरे शेख की तरफ, लल्लाह के अल्लाह के लिए, अल्लाह की खातिर, किसी नफ्स के खातिर नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा शेख है, इसके पास जाऊँगा तो ज़्यादा मेरे ज़्यादा मशहूरी हो जाएगी, ये शेख हदीस है, ये फलां है, लोग ज़्यादा मेरे पीछे चलेंगे, वो तो उससे बैठो, ये नफ्स होता है। बाज़ दफ़ा शेख मिलते हैं बड़ा गुमनाम होता है, जैसे मैं गदाई शरीफ गया था, कोई नहीं जानता था इंग्लैंड में उनको, लेकिन उससे बड़े बड़े शेख मेरे सामने मौजूद थे, बड़े बड़े नामवर शेख मौजूद थे, लेकिन बाईपास करता रहा मैं, क्योंकि मैं शेख वो लेना था जिससे मेरी सही इसलाह हो सके। यहाँ लाखों के हजूम हर वक्त हमारी जगह बात पकड़ ली, ना कभी मुलाकात, ना कोई लेना, ना कभी देना, कुछ लोग हम तो मुशरीद हैं, हम तो ये हैं। तो अदब शेख अदब ये है, तरीकत का थे, आपने अपनी इसलाह करानी है, इसलाह कराने के लिए आपको किसी आदमी की ज़रूरत है जो आपकी इसलाह करे, ये मकसद है इसका। वो आदमी आपसे दूर हो गया है, या आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है, या आप कहीं ज़हनी या आपके कोई समझ मसले के इख्तलाफ महसूस करते हैं जिसमें आपको रुकावट आ रही है बहुत सी, तो आप बिला हजक किसी मजलिस में पहुंच गए, आप देखते हैं कि इसमें मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, बिला तकल्लुफ़ आप उसके हजरत मुझे यहाँ फ़ायदा महसूस हो रहा है, तो आप मुझ पर रहम फरमाएँ, करम फरमाएँ, मुझे इस सिलसिले में दाखिल करें। फिर वो शेख पर होता है, अभी तो अल्लाह की तरफ रुजू करता है ना कि भाई क्या फ़ायदा होगा उसके, या हर जाए तो नहीं, वैसी तो नहीं शेख तब्दील करता फिर रहा है कुछ, मतलब किसी और चीज़ से रीज़न तो नहीं है इसका, जो ये कि खिलाफतें भी मिल जाए, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें कब्र तक अपनी तैयारी करनी है। शैतान इंसान को बड़े बड़े चीज़ों से वर्गला लेता है, आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ इंसान को किधर लेके जा रहा है, कौन सा तीर इस्तेमाल कर रहा है, किधर धकेल रहा है इंसान को, नहीं पता चलता इंसान को। एक वाक़ा है, लेकिन वो इंशाल्लाह कभी आप जुमेरात में सुनाऊंगा उसके बारे में, शैतान कैसे इंसान को खींचता है, किस तरह उसको बखला लेता है। तो उसके लिए फिर आदमी के शेख चिंता करो, अब ठीक है, अब आपने उस आदमी को अख्तियार कर लिए, अब पिछली बात जो ख़त्म हो गई है, अब आपका एक नया सफ़र शुरू हो गया है, नया दौर शुरू हो गया है, नई चीज़ शुरू हो गई है, तो अब आप उन वज़ाइफ़ को लेकर पीछे चलेंगे तो फिर आप ये वजीफे भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मकसद वजीफे नहीं है, मकसद इसलाह है। बाद क्या कहते हैं, हजरत मैं वो वजीफे करता हूँ तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने बताए थे, मैं सब वो वजीफे करता हूँ ये करता, अगर वजीफे ही करने तो भाई आने की क्या ज़रूरत थी, वजीफे करते रहो जो तुम कर रहे हो, तो वजीफे करते, लेकिन क्योंकि वजीफा जो है ये इसलाह का एक वेपन है, हथियार है, तो इस शेख के पास क्या हथियार है, कौन सा वेपन इस्तेमाल करते हैं आपके लिए, उसको इस्तेमाल करें, उसकी वजीफे अख्तियार करें। मकसद तो अल्लाह को पाना है, वजीफे करना थोड़ी है, चिल्ले थोड़े लगाने हैं मैंने यहाँ पे, सही कह रहा हूँ बात समझा ली, ताकि वसवसे निकले ना इधर के ना उधर की, उधर ही वसवसा आता है, यार मैं ये करूँगा तो वो मेरा वजीफा रह जाएगा, इसको कहते नहीं, वो किताब मेरी बंद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से अब मुझे नए सिलसिले में आ गए, नए तरीके से मैंने चलना है। लेकिन पुराना शेख अगर आपको अच्छा है, बाशरा है, और उसमें ऐब नहीं है, तो उसकी हमेशा इज्जत जहन में रखें, उसके लिए दुआएँ करें, उसके जब भी जाए मुलाकात करें तो जिस तरह आपका अंदाज था जाने का, दे लेके जाना, मोहब्बत से जाना, उसको कायम रखें, दिल में उसकी दुआएं करें। लेकिन अब इस्लाम के लिए आपने दूसरे शेख को चुना है तो उसके साथ अपने बर्ताव कैसे रखें कि जो वो हिदायत दे रहा है, जो वो तरीका बता रहा है, उस तरीके को अख्तियार करें, उससे आपको खुद सुकून मिलेगा। वजीफा आपको कि मैं गलत नहीं कर रहा, कि मतलब फोन कभी ऐसे घबराने की बात नहीं है। तो एक ध्यान में रख लें कि हमें कोई बंदा नहीं चाहिए, कि रज़ाए इलाही चाहिए। और इस नियत से इंसान न कर, मत बुजुर्ग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, इस नियत से इंसान अगर किसी गलत कदम के उठ भी गया तो अल्लाह ताला उसकी सलाह फरमा देते हैं, उस कामयाब कर देते हैं। क्योंकि नीयत तो सही है ना इसकी, लेकिन कदम इसने गलत उठा लिया है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उसको फाइन कर देते हैं, फाइन कर देते हैं और सही कर देते हैं। तो इससे ना घबराए, नीयत सही है, रजा की हो तो फिर बाकायदगी के साथ, फिर जब नया शेख लें उसके असूलों पर चलें, उसके तरीके से चलें, उसकी आदात को समझें, उसकी वज़ाइफ को समझें, उसके असूलों के साथ ज़िंदगी गुजारें, फिर और पूरे मुजाहदे के साथ क्या चीज़ है उसके यहाँ होता है उसको अख्तियार करें। तो दैट्स द वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द सब। हाँ जी, खौफ, आप एक शहर में हैं या किसी जगह पर हैं, वहाँ आपके शेख हैं, और उसी शहर में के और शेख हैं जो ये करते हैं, तस्किया करते हैं, मुश्किल है। इत्तेफाक साहब उस मजलिस में चले गए, आप देखा यहाँ तो बड़ा दिल लग रहा है बैठो, तो इस रूप में आपको शेख चम तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, फिर क्योंकि आप उसी जगह पर हैं, वहीं पर हैं, तब्दील शेख के फिर इसके लिए रीज़न चाहिए, इसके लिए बकर शरी रीज़न होता है, जो अदाब है तजीकत में आता है, भी क्या वजह है कि आप अपने शेख को छोड़ना चाहते हैं, उसकी कोई शरी उज़र हो कि भाई यहाँ पे कोई बिदात हो रही है, या कोई ऐसी चीज़ मैं देख रहा हूँ, या कोई इस किस्म के मामलात हैं जो खिलाफ शरीयत है, खिलाफ शरह है, तो इससे मेरे जहन में साफिस है और कुछ तर्ज सही नहीं है या होना चाहिए जिस तरह, तो फिर उस सूरत में आप उस शेख को छोड़ सकते हैं, रीज़न है आपके पास इस शरीर। मैं चला गया था तो, लेकिन यहाँ जो मैं आया तो मुझे पता चला था यहाँ तो सही रास्ता है, यहाँ सही चीज़ है, शरीर उसके मुताबिक है, इस पे अलाउड है आप चेंज करने के, जब उसी जगह पर है। लेकिन अगर कोई ऐसी वजह नहीं है, शरीर के मुताबिक है, हजरत बाकायदा शरीर की पाबंदी करते हैं, शेख सब कुछ अकीदा वगैरह उनका सब सही है, आप उनसे मुंसलिक हैं, फिर आपको छोड़ने के, फिर उसमें अदब ये है कि फिर ऐसे आदमी को किसी और मजलिस में जाना भी नहीं चाहिए, याद रख, फिर नजरूरत ही नहीं है आपको, ये फला आदमी उनके दस में बड़ा मजा आता है, ये आता है, ये खिलाफ अदब है, ये फिर शैतान अपने तीर चला के आपको ना इधर का छोड़ेगा ना उधर का छोड़ेगा। जब आए की जगह स्टिक हो गया, आप एक शहर में पहुंच चुके हैं, आपको शेख मिल गया है, शरीयत है, महज पहुंच रहा है, फिर उस मुरीद को चाहिए फिर ना किसी की कैसेटें सुने, ना तकरीरें सुने, जो कुछ भी रहबरी रहनी है अपने शेख की बातों पर चले, वही उसके लिए सब कुछ बन जाता है। शेख रोदू से बनता है, मुतकी बनता है, तकवा बनता है, सब कुछ फिर समझेंगे मेरा जो नसीब है मंसूब हो गया है इस शेख के साथ, मुझे यहीं से मिलना है, फिर किसी जगह मुझे यहाँ से बात सुन लें, उससे बात सुन लें। शैतान फिर उन बातों को जहन मिला के आपको कन्फ्यूज करता है, घबराता है, फिर आप सोचते हैं इधर सही है उधर सही है। मैं तो देखता हूँ लोग काफ़ी आते हैं मेरे पास, किस कम तो जो अच्छा शेख हो उसको वापस भेज देते हैं कि तुम कल मेरे पास भी भाग जाओगे इस तरीके से, तो छोड़ के उसको आए तो फॉर दिस रीज़न हम उनको शेख की तरफ करते हैं, दैट्स एब्सोल्यूट रॉन्ग। कभी जब एक मिल जाए शेख, फिर आपको किसी शेख के पास बैठने की, कितने अच्छे हो ना मां सुनेंगे ना बैठ, बेश आप ही के सिलसिले का हो, नक्शबंदी शेख है वो, नहीं वो बदल देंगे आप। हर शेख का अपना एक तर्ज होता है, जिसमें नक्शबंदी हजरत के कई खुलफा हैं, सत्तर के खुलफा हैं, लेकिन आप जब कहेंगे तो हजरत साहब को भी खलीफ में से हम बैठते हैं, लेकिन ज़मीन आसमान का फर्क नजर आएगा आप, याद रखें हैं वो भी हजरत के खलीफा, लेकिन अंदाज मुख्तलिफ है, اپروچ مختلف ہے دیکھیے پریشانی کی. تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے جو آپ کے شیخ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, آپ کا اور شیخ کا مزاج ملتا ہو, نسبت ملتی ہو, کیفیت ملتی ہو, تو پھر ایک دم روحانی انتباط ہو جاتے ہیں, مل جاتی ہیں, تو پھر فیض جاری ہو جاتا ہے. اگر یہ طبیعت ملتی نہ ہو, یہ چیز ہی نہ ہو, تو پھر کتنے بڑا شیخ ہو آپ کو اس سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا. سمجھ آئیے بات, یہ بڑا قیمتی ملتا ہے. تو چھوٹا شیخ ہے لیکن آپ کا مزاج مل گیا اس سے, آپ کو اس کی محبت ہو گئی اور آپ کو وہ سمجھ آنے لگا ہے اس کی بات ہے, آپ اس کے ساتھ نسبت ہو گئی مضبوط روحانی طور پر, تو آپ سے فیض کھینچیں گے الحمدللہ. یہ ایسا ہی جسے آپ کو طبیعت نہیں ملتی, اس سے مزاج نہیں مل رہا آپ کا, تو فیض نہیں, آپ کو زبردست سے آپ بیٹھے. اس لیے جب ایک ہی حضرت کے اتنے سارے خلیفہ ہیں, تو آپ کی تو سب خلیفہ چل اس کے پاس سے ہوتے ہیں, بہت سے حدیث سے حدیث ہوتے ہیں, جب ان سے بھی خلاف لیتے ہیں, ان سے خلاف ہمارا مقصد خلافت ہے, وہ جمع کرتے رہتے ہیں خلاف, اس نے اجازت دے دی, اس نے اجازت دی. یہ حدیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں, نام کے سامنے اشتہار لگانے والے, نہیں بس پھر بھی نہیں جانا کسی کے پاس, کہتے ہیں نہیں ہمارا شیخ تو یہی ہے, انہیں کے پاس ہم بیٹھیں گے. ادب کرنا ہے سب کو, لیکن کیا فیض قصب فیض ہوگا آپ کو اپنے شیخ سے ہوگا, چاہے وہ ایک ہی ممبئی سے نکلی ہوئی آبشار ہے, پانی ہے, لیکن جو میٹھا پانی نکلے گا آپ کے, میٹھا پانی فاؤنٹینشن جو نکلنے چشمہ نکلنا آپ کے شیخ کی اس میں سے نکلے گا, کنویں سے, اسی کو پیے. تو اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ جب آپ شیخ بنا لیں تو آپ اپنے انٹینشن کو, اپنے دھیان کو ادھر ادھر نہ کریں, نہ گفتگو میں نہرے میں, سب کچھ وہیں سے مل جائے گا. اکتفا کریں, قناعت کریں الحمدللہ. جب تک شیخ خود نہ آپ کو کہہ دے کہ یہ چیز آپ فلاں جگہ سے لیں, یہ فلاں جگہ سے لیں, مزید کسی چیز کے لیے آپ کو گائیڈ کرے, وہ ڈفرینٹ چیز ہے. سمجھا نہیں بات, یہ فائدہ مند چیز ہے. تو اگر ایک ہی شیخ ہو اور ایک کے شیخ کے کئی ہوں خلیفہ ہوں, تو آپ کہتے ہیں چلو جاؤ یہاں حضرت صاحب ہیں تو جہاں وہ بھی حضرت صاحب, ان کے انسنگ پاس شروع ہو جائیں, بالکل نہیں, اپنے اپنے پاس حساب پہ رکھیں, ہر ایک کی مزاج جہاں مزاج آپ کو ملے گا الحمدللہ ختم. وقتی طور پہ نہیں کرتے, متا نہیں کرتے, ہمارا متا نہیں ہے, پرمنٹ نکاح ہوتے ہیں ہمارے یہاں, بتا سمجھتے نا گھنٹوں کی شادی, تو ہمارے پکا نکاح ہوتا ہے, متاور چکر نہیں ہے ہمارے, دو گھنٹے یا تین گھنٹے وہاں چار, سمجھا گی بات. تو اب یہ ہے کہ جب اللہ نے پہنچایا کسی کو, تو اس شیخ قائم, عقیدہ محبت سب قائم, پہلے شیخ سے عقیدہ رکھے, اور ٹرانسفر شیخ کی دونوں چیزیں بتا دی آپ کو, پہلی صورت میں بھی جائز ہے, دوسری صورت میں بھی, اگر ایک ہی شہر میں ایک ہی جگہ شیخ کا, لیکن آپ کی طبیعت نہیں ملتی, آپ کو زیادہ فائدہ یہاں ہو رہا ہے, یہاں شریعت زیادہ ہے, سنت زیادہ ہے, محبت زیادہ ہے, یو کین چینج اٹ, نہ ود آؤٹ دس چینج نہیں کرنا چاہیے. آپ ایک شیخ کے ساتھ لگے ہیں تو آپ کسی کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں, زیادہ چاہیں گے آپ کو فیض پہنچ جائے اپنے شیخ سے, وائی یو گوئنگ ٹو ہیئر دیئر اسٹل دیئر. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لگتے ہیں مسجد میں, مزے میں تو یہ نہیں تو خبر ہے, میں سلپ کر جاتا ہوں, کوئی بھی سین میں شیطان سے بات ڈال دے, بڑھاپے میں ڈال دیتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے, پھر اس نقطے کو نکال دے, کوئی بھی نقطہ ڈال کے آپ کو کنفیوز کر دے. شیطان کا کام ہے کہ میں نے اس کو موت تک نہیں چھوڑنا, اس کو نکالنا ہے. یہ تخبت تھی شیطان عند الموت, یہ دعا ہے نا کہ اللہ مرتے وقت میں شیطان کی خب سے بچانا, یہ تخبت تھی ہے, یہ دعا ہے. تو کن حجت لی ایمان اللہ, یہ بھی آخری وقت کی دعا ہے کہ مجھے آخری وقت میں مجھے سب سے بڑی چیز حجت ایمان پر قائم رکھنا, یہ آخری وقت کی دعا ہے مرنے کے وقت کی, لیکن حجت لی ایمان دل موت ہے نا, خط شیطان دل موت, شیطان آ جائے گا آپ کے پاس, لیکن مجمع لے کے آتا ہے, وہ کس اللہ کو مانتا ہے, کون سا اللہ, کون سا شیخ, کیا بات, استقامت ہوگی یا جوتا ماریں گے اس کے منہ پر, نزدیک نہیں آئے گا. تو ظاہری بات, इसका नाम तस्वीर, सिर्फ तस्वीर करने का नाम, जिक्र करने का नाम नहीं, ये सारे आदाब जो होते हैं इंसान में हमारे यहाँ देखें ना, पहली स्टेज से शुरू होता है फैल, यानी आप बैठे कैसे हैं मस्जिद में, हल्के का अदब इतना आपने कितना किया, शेख अदब तो बाद में आता है, जो हल्का लगे तो बीच में कोई जगह ना छोड़े मरीज, तो उसको पहले आए तो उसको हल्के उस जगह फुल करे, लाइनें बराबर होनी चाहिए, दायरे में होनी चाहिए या स्ट्रेट होनी चाहिए, दायरे भी उसको भी हल्का कहते हैं, ऐसे जो बनता है ना, जैसे चांद के गिर्द बनता है ना, सहाबा ऐसे ही बैठते थे, हल्की शक्ल इधर ही होते हैं, लेकिन हल्का फासले के साथ होता है, बेअदबी ना हो शेख के साथ, फासला रखा जाता है उसके साथ, तो यहीं से अदब शुरू हो जाता है इंसान को, उधर बैठा है कोई दीवार के साथ बैठे, वो है ही बेकार आदमी, उसको पता ही नहीं कि कहाँ आया हूँ, ये कोई आप फिल्म पिक्चर आज में तो नहीं ना है, जहाँ टिकट मिल गया कुर्सी बैठ कर स्क्रीन पर तमाशा देख रहे हैं, जहाँ बैठ जाओ, यहाँ आप एक फैस को तलब और लेने के लिए आप आए हैं, किसी मकसद के लिए आए हैं, और ये वो जगह है, ये वो जगह है कि उस हल्के के ऊपर हजारों मिलियन फरिश्ते उतर रहे हैं, ऑडियल लेकर वहाँ उतर रही है उस जगह पर, आप उसमें आप वहाँ बेद भी कर रहे हैं, लानतें पड़ती हैं ऐसे इंसान पर, ऐसे इंसान हमेशा नाकाम होते हैं, बादब बानसी बेदब, जिसने उस हल्के के अदब नहीं किया कि मैंने बैठना कैसे है, जाना कैसे है, शेख का हल्का जमा हुआ है, भलाइक उतर रहे हैं, अल्लाह की रहमतें उतर रही हैं, फरिश्तों में घेरा हुआ है, आप जाकर दीवार के साथ बैठे नहीं, आए अदब से देखें खड़े होकर कि कहाँ जगह खाली कर, पड़े दबे पाँव झुके हुए, डिस्टर्ब ना हो कोई फिश्ता, डिस्टर्ब ना हो, नाराज ना हो, जल्दी बनाते उस जगह फिल करके बैठ जाए, इस तरह पीछे हल्का पड़ता रहे, आती हम क्या करते हैं पीछे जगह तलाश करते हैं, टेक लग जाए हमारी, पीछे से चुपके से हम निकल जाए, हाँ आप जाना है वहां से भी जा सकते हैं आप जल्दी, हमारा क्या होता है भाई, हमारा काम तो लेट कम एंड अर्ली गो वाला मामला है, देर से और जल्दी निकलो, पिक्चर हाउस से निकलते हैं ना आदमी हैं, फुटबॉल की मैचों से पीछे बैठूंगी यार रश वाल जल्दी से हम निकल जाएंगे, अल्लाह के बंदे ये तो एक नूरानी हल्का है, ये आप फैस लेने आए हुए हैं, अल्लाह की रहमतें लूटने आए हुए हैं, और ये अल्लाह की कर्म फजल से आपको यहाँ पहुँचा दिया, कितने सौ बोटल में आदमी होंगे हैं, काउंट कर लें ना कितने होंगे, तो उनमें से सिर्फ आपको सिलेक्ट किया इस काम के लिए, कितनी वाज़ा हदीस है कि जैसे हल्का जमता है फरिश्ते उस चारों तरफ से घेर लेते हैं, अल्लाह की रहमत उसको ढांप लेती है, और उसके अंदर अल्लाह अपना सकीना नाजिल करना शुरू कर देता है, और आसमान पे अल्लाह पे फख्र कर रहा है, ये वो मजमू है, उसमें आप बेइज्जती कर रहे हैं अपने शेख की, डिस्क बेइज्जती कर रहे हैं, डिस्क टांगे फैला रहे हैं, उल्टी से हिल रहे हैं, हर चीज़ अदब से करनी है, आना अदब से है, जाना अदब से है, तलाश जगह तो अदब से करनी है, बैठना है, हल्के में शामिल होना है, मतलब यहाँ से पेश शुरू होता है फैस के सब, कि किस तरीके से है, किस अदब से है, किस अंदाज से बैठ रहा है, बात समझ आ रही है आपको, करके देखें आपको फर्क नजर आएगा, हल्के की अदब करके देखें, अच्छा हदीसों को भी यकीन करो भाई, कि जहाँ आप जा रहे हैं पता है नजूल होता है आसमान जमीन भर जाता है फरिश्तों से, हदीस बता रही है, हम तो नहीं देख सकते ना आलम गैब को, अल्लाह के नबी जो बता दिया हमारी तो वही है ना, हम तो नहीं गैब के अलम जानते, हमें नहीं पता, जो अलम है हमें खबर देने यह था मुबशिन व नजीरा, तो हमें तो खबरें उन्होंने देनी थी, तो हम इस पर यकीन नहीं आ रहा कि जहाँ हम बैठे हैं हल्के बैठे नहीं बैठे हैं मस्जिद में आए, जिक्र का ना जिक्र पे यकीन, ना उस आदमी पे यकीन, ना उसका कोई अदब, ना कोई एहसास, बस आगे बैठ गए, बाद में बदतमीजी करनी, गाली निकालनी, उसी मजमे हुआ तंज तना करना, कितना फ़र्क है मुझे बताएं, वो तो प्योर जहन्नुम कमा के जा रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल अस्तगफार पढ़ते आए कि अल्लाह ताला माफ फरमाना गुनाह मेरे, तो एक बहुत बड़ी जगह पे तू मुझे भेज दिया, यहाँ तेरी रहमत है, फरिश्तों ने घेरा हुआ है और तूने ढांपा हुआ है, और एक साख यहाँ मिली सकीना यहाँ की नहीं है, सकीना चीज आसमानों की है, ये जन्नत का इनाम है, ये सकीना जो लफ्ज है ना यहाँ नहीं मिलता, ये कहाँ मिलता है, ये जन्नत में मिलेगा, और एक ध्यान ख्याल आगे बता दूँ आपको, हर जन्नत को नहीं मिलेगा, ये صرف یہ سکینہ اس کو ملے گا جو دیدار الہی سے مستفید ہوگا. دیکھیں کیسا نقطہ آپ کو بتایا, دیدار الہی ہر جنتی کو نصیب نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جنتی کو نصیب نہیں ہوگا, وہ خاص جنتی ہے, ان کی خاصیت ہوگی جس پہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. اچھا ان کو کیسے دے گا؟ یہ نہیں جمع کریں گے میدان کے اندر, لوگ جمع ہو رہے ہیں دیدار ہوگا, نہیں نہیں نہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے, ایک آدمی گھر میں بیٹھے ہیں, ایک دکان میں بیٹھے ہیں, سورج نکلا ہے, ہر آدمی اس جگہ سے سورج کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, سمجھا گئی بات آپ؟ سورج کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا آدمی؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, تو اس گھر میں بیٹھے وہ بھی سورج کو دیکھ رہا ہے, آپ اپنی کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ کا دیدار ایسے ہی ہو کہ ہر جنتی کو اسے دیکھے گا, اس کے اس طرح کے محلات بنائے جائیں گے کہ وہ نبی اللہ سبحانہ کا دیدار کو وہاں سے مستفید ہوگا. لیکن ہر گھر میں بیٹھ کے آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے, بعض گھروں کے اندر دیواریں ہوتی ہیں سورج دیکھنے کے باہر جانا پڑتا ہے. اسی طرح ہر جنتی کو نظر ہو دیدار لائے نہیں ہوگا, یہ آپ کو عجیب بات بتا رہا. تو یہ سکینہ جو ہے نا, جو خاص قسم کو دیتا ہے, جب حلقے میں آپ آگے بیٹھتے ہیں گھیرتے ہیں, حلقے میں ہوتا ہے شیخ موجود ہوتا ہے, اور آپ آگے اقتصاب فیض کے لیے آئے ہیں اور آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں اور اللہ کو عمل کر رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ انعام جو جنت میں خاص جنتی کو دے گا سکینے کا, اس کی جھلکیاں ڈال دیتا ہے اس کی. آپ ٹانگ پھیلا کے پیچھے بیٹھے منہ اٹھا کیا ہے, اب سمجھ رہے کتنی بے ادبی ہے, کتنے بے ادب ہیں وہ لوگ. آپ سوچیں تو یہ بھی بے ادبی ہے, دوسروں کو کہنا ہو تم ایسے کیوں بیٹھے ہو, تم ٹانگ کیوں نہیں کرتے ہو, ایسے نہیں کہتے ہیں, بزرگوں کو ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں. آپ سے بڑے ہیں, کوئی عالم بھی ہیں, کوئی بڑے انسان بیٹھے ہیں, وہ جس طرح شیخ جانے وہ جانے, الحمد للہ شیخ کو تربیت کرنی آتی, سب کی تربیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, اس میں عالم بھی ہیں غیر عالم بھی ہیں, نئے بھی ہیں پرانے بھی ہیں, سب کی تربیت ہوگی اس میں. خبردار آپ یہ کہنا آپ جس طرح نہ بیٹھیں گے بید بھی ہے سب ایسے نہ بیٹھیں, انتہائی بدتمیزی سے کہنا, آپ بہت بڑا ادب ہیں, مصیب تربیت ہو جائے گی ان شاء اللہ, تربیت ہو جاتی ہے سب خود, اس شیخ کا ذمہ ہے. لیٹنگ کم جس طرح وہ آ رہے ہیں ہلکا سا کہہ دیں, وہ پیچھا کے بیٹھے گا آپ تشریف لیں ہلکے میں تو بہت اچھی چیز ہو جائے گی, بس اتنا, اس سے کسی کو طنز نہیں کرنا ہوتا ہلکے میں, اپنی فکر کریں یہاں, دوسروں نے دیکھیں یہ کیا کر رہے, یہ بے ادبی کر رہا فلاں کر رہے, خبردار اپنی فکر کریں گے میں کتنا بادب ہو کر آیا ہوں, میں کتنا اقتصاد فیض لے کے جا رہا ہوں, مجھے اس آدمی سے کتنا عقیدہ ہے کتنی محبت ہے. اس کے حلقے میں کبھی نہ جائیں جس سے آپ کو محبت نہیں ہے, جس سے آپ کو عقیدت نہیں ہے, جس ذکر میں جا رہے ہیں سب آپ کماؤں گے جی, کھوتا کمانا ہے تو دیکھو آپ جنوں کو آپ کما کے لے جاؤ گے. تو سب سے پہلے کسی آدمی سے اقتصاد فیض کرنے کے لیے اس کے حلقے میں جانے سے پہلے اس سے محبت کرو, اور وہی ہوتا ہے کام, جو آتا ہے اس کو سب سے پہلے محبت ہوتی ہے نئے اچھے نیت والے کو, کیا سب پتہ نہیں آپ سے بڑی محبت ہوگی, وہ سمجھو اس کے دل لگ گیا, اللہ نے اس کو چن لیا اس فیض کے لیے, مبارک ہو شخص, کروڑوں کروڑوں مبارک, اللہ نے تجھے چن لیا ہے, وہ فیض اٹھائے گا تو یہاں سے مدد دے پھول ہو کے جائے گا. سمجھے نا باتیں سر, باد پالسی بے ادب بے نصیب. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, میں بھی آپ کی طرح اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم ہوں ماشاء اللہ, میں بھی آپ کو, میں آپ سے سیکھتا ہوں, آپ مجھے سکھائیں, میں آپ سے سیکھتا ہوں, بہت سی چیز اسی ادب کرتے دیکھتا ہوں, ماشاء اللہ کتنا اچھا لوگ کر رہے ہیں آدمی, میں بھی ایسے بادب ہو جاؤں تو میں بھی کہتا ہوں ایسے. ہم سب طالب علم ہیں, ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم اس اپنی سے گھر سے نکلے ہیں کہاں جا رہے ہیں, مسجد جا رہے ہیں, مسجد کے علاوہ اپنی جگہ ہے وہ پڑھنے کے علاوہ, کسی بزرگ سے ملنے جا رہے ہیں اس کے ادب اپنی جگہ ہے, ذکر کے حلقے میں جا رہے ہیں اس کے ادب ڈفرینٹ ہیں, ہاں وہاں شیخ ہے اللہ ایک چنا ہوا آدمی ہے, حضور بغات رنگا ہوا ہے, رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہے, اس کی گرد لوگ جمع ہو گئے ہیں, جیسے لوگ جمع ہوئے ہیں اس سے ملین ملین زیادہ فرشتے زمین بھی جمع ہو گئے ہیں, وہ ہلکا آسمانوں پہ نور کی طرح چمکتا نظر آ رہا ہے, اور سرشت نے اس کو گھیر لیا, اس سے آپ جا رہے ہیں, اس کو سوچا کریں کہ کیسے جانا ہے. سمجھ آ رہی بات, کتنے پہلے وہاں پہنچنا ہے, کتنی جلدی وہاں پہنچنا ہے, کتنے ادب سے وہاں پہنچنا ہے, وہاں بالکل کوئی چیز ضائع نہیں کر. یہ بدتمیز ثواب لینا رہے ہیں, ثواب شواب نہیں ہے یہاں پہ, یہاں ثواب نہیں ملتا, ڈائریکٹ اللہ ملتا ہے. سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ پہ اس دعا کے بعد, یہاں تو اللہ ملتا ہے. آپ ثوابوں کے چکر میں, جب اللہ ہی مل گیا تو ثواب ہی ثواب ہے یا نہیں جی, کیوں مولانا اللہ کو لینے آ رہے ہیں بھائی, تمیز سے ہیں, طریقے سے ہیں, وقت پر ہیں, وقت سے پہلے ہیں, نائس ہلکا بنائے, جگہ صاف ستھرا رکھیں, اپنے سخت بیٹھتے ہیں, اٹھ کے جلدی جانا ہے, آرام سے جائیں, کسی کو ڈسٹربنس ہو, دیر سے آنا ہے, آرام سے آئیں, منع نہیں ہے جلدی جانا, دیر سے آنا, آرام سے تو جو دیکھ پہ بعد میں آ رہا ہے اس سے وہ فیل کرے جو آگے خالی ہوئی ہے, پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو تین چیزیں ایسے حلقے میں آنے کے لیے, سب سے پہلے اس آدمی کو اس حلقے کی محبت ہو, اس شیخ سے محبت ہو, اور اقتخاب فیض یعنی فیض حاصل کرنے کی نیت ہو, جی میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اپنی آخرت کا, تب آئے. میں نے فضل بولا, مجھے بھی مجموعہ جمانے کا شوق نہیں ہے, میرے سامنے تین آدمی اصل ہوں گے, میرا کام بنے گا, ان کا بھی بنے گا. حلقے کا مطلب یہ ہوتا ہے مجمع بڑا نہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے 6-6, 8,000 آدمی کے سامنے بولا ہوں نا, میں کوئی ڈفرنس دیکھتے ہیں میرے بولنے میں, اتنا تو وہاں نہیں بولتے ان کے سامنے, آپ کے سامنے بولتا ہوں, کیونکہ میرا مقصد نہ مجمع ہے نہ کچھ, میرا مقصد اللہ سے فیض ملتا رہے بس. ہم دو آدمی بیٹھے ہیں, اچھی بات نکلنی ہے بتا دیتا ہوں میں, ابھی کتنی قیمتیں بتا رہا ہوں آپ کو, تو آدمی تو نہیں ہے, اور جہاں 8,000 کا مجمع لگا, دن میں کوئی بات نہیں آ رہی, نہیں کرتا ہوں بات, کاٹ دیتا ہوں, یہ آدمی شخص نہیں آتا دے رہا میرے دل میں, وہاں زور لگا کے باتیں کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں, ان کو راضی کر دوں آدمیوں کو. آپ خود محسوس کیا ہوگا آپ نے, نہیں کیا, بیٹھ دیتا ہوں, بیٹھ کے کوئی حدیث سنا شروع کر دیتا ہوں, بس جیسے پھر ادھر سے اترنا شروع ہوتا ہے میں آپ بتاتا رہتا ہوں. تو کتنی قیمتی آدمی آپ ہیں, چھوٹے سے ہیں, لیکن یہ مجموعی باتیں ہو رہی ہیں آپ سے. میں آپ کو پاگل نہیں ہوں ہر وقت بولتا ہوں بیٹھ کے, ابھی تھکا ہو تو آدمی, میں ابھی سوچتا ہوں جا کے تھوڑا آرام کر لوں, لیکن کیا کروں گا جب وہ چیز آ گئی ذہن میں, چلو بتاؤ اللہ نے حکم دی ہے. اب یہ نہ سوچنا تھوڑے لوگ نہیں, یہ تو اتنے بڑے لوگ ہوں کہ ہزاروں لوگوں کے بھاری ہیں یہ لوگ. دیکھا نہیں نبینا آیا تھا تو وہ کیا آیا تھا قرآن کی, ابس آیا تھا اللہ, اللہ نے کہا نا کہ نبی ایسا نہ کریں, ایک اب ٹھیک ہے لوگ جمع ہے تیرے پاس, تم کو تو فیض پہنچا رہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ آدمی جو تیرے پاس آیا ہو, ابس آ تو اللہ ہے نا قرآن میں, یہ تربیت شیخ ہے سوال, یعنی نبی کے ذریعے تربیت کی جا رہی ہے آنے والے شیخوں کی, نبی کے ساتھ تو معاملہ ڈفرینٹ تھے نا, تو حقیقت میں کس کو بتایا جا رہا ہے, یہ مشائخ کرام کو بتایا جا رہا ہے, کہ چن چن کے آدمی نہ دیکھ کر, یہ امیر آدمی ہے, یہ کے پاس نہ پیسہ ہے, یہ اتنے گفٹ دیتا ہے, یہ فلاں کرتا ہے, یہ وہ آگے آئے گا پیچھے آئے گا, نہیں, یہ دیکھ کس کا دل طلب شیخ کی تیار تیار, دل کس کا طلب ہے اس وقت. تو پانچ آدمی بیٹھے ہیں اور بہت اچھی باتیں تیرے ذہن میں آ رہی ہیں, جمع اگر نکال دے اس کو, یہ پہنچیں گے بہت دور تک, یہ خزانے صبح صبح بٹ رہے ہیں آپ کے لیے, یہ مجمع نہیں ہو رہی نا باتیں, تو اس کا مطلب یہ الحام اللہ کی طرف سے, اور اللہ نے اس چھوٹے سے لوگوں کو چنا ہے کہ ان کو پہنچائے یہ بات, صحیح بتائیں آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ہو رہا ہے نا, ہزاروں کتابیں آپ پڑھتے ہیں, موقع بھی نہیں کتابیں پڑھنے کا, بزرگوں کی اخزاری پڑھ رہا ہے, کچھ پڑھ رہا ہے, کہیں بھی آپ کو نکات نہیں ملیں گے, کیوں کہ ہر وقت کے ساتھ انداز بدلتے رہتے ہیں. غزالی کا اپنا دور تھا, داتا کا اپنا دور تھا, حضرت چشتی رحمت کا اپنا دور تھا, حضرت صاحب کا اپنا دور تھا, یہ دور ڈفرینٹ ہے, کہتے ہیں یہاں لوگوں کو ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے, یہ ٹی وی والے ہیں, یہ باجے والے ہیں, یہ लड़कियों को देखने वाले हैं, टेलीफोन में बदमाशी करने वाले हैं, तो इनको शौक के साथ पहुंचाए इनको, कभी इनको नाच सुना, कभी इनको शेर सुना, कभी इनको मस्त कर, हर रंग को दिखा के अपने को खींच ले इनको। तो यहाँ नहीं आप यहाँ के पुराने शेख तलाश करें, वो तो ऐसी कहते नहीं नहीं रंग बदल गए हैं, इसलिए चेंज हो चुकी है। नहीं सर, इंडिया में तो आपको दूसरा रंग था, यहाँ है तो दूसरा, आपको क्या अच्छे लगने लगे, टेक अच्छे लगने शुरू हो गए आपको, उसमें लाइन लगाते हैं। वहाँ तो इंडिया में तो पता ही ना टेक जो मिल गया लिया सब्जी थोड़ी छाल को नया खा लिया फिर हो गए, तो हर जगह टेस्ट बदल जाते हैं। यहाँ का शेख भी डिफरेंट है, आप यकीन करें, जब मैं जाता था तो मोहब्बत से लोग कहते यहाँ तो क्लिक करें, वो नाम शाम छाप देते थे, मैं कैसे जान छोड़ा, मैं तो बोल ही नहीं सकता प्यार, तो शेख शेख होता है ना, एक दफा सामने इशारा कर दिया कि फकीर को तंग ना किया करें, यहाँ ये नहीं बोल सकता, तब जान छोड़ी मेरे लोगों ने, पर हम खींच के नहीं, आप यहाँ तक क्लिक करें, यहाँ तक करें, मैं वहाँ बोल ही नहीं सकता, मैं वहाँ का शेख ही नहीं, मैं यहाँ का शेख हूँ, जितना मजा आप लोग के साथ बोलने में आता है आता ही नहीं मुझे, वो कुछ लुच्छ नहीं है इस बोलने के, लेकिन यहाँ समझाने में बात, क्योंकि यहाँ का तर्ज लोगों का मेंटल डिफरेंट है ना, यहाँ हो गया यहाँ पैदा हुए हैं, देखें स्टाइल डिफरेंट का, गुना डिफरेंट है, अंदाज डिफरेंट है, तो यहाँ इंसान समझाते उस अंदाज से, जब यहाँ शेख आपने ले लिया उस अंदाज को एक्सेप्ट, वो ही पुराने से काम करेंगे तो फिर वो तो पुराना और नई तहसीब मिल नहीं सकती आपस में कभी, ये डिफरेंट सिलसिला से शुरू हो जाती है, नक्शबंदी सिलसिला इसलिए सबसे आखिरी सिलसिला है, ये क्यामत तक चलेगी, इसकी प्रोडिक्शन दी है, बहरहाल कोई हदीस तो ऐसी नहीं है, है मिलती है कई किस्म के हदीसों में, लेकिन क्योंकि प्रोडिक्शन है, प्रोडिक्शन पेशन गोई दी है हजरत मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह ने, तो अच्छी दलील है ये, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते पुरानी या हदीस की दलील है, लेकिन दिल मानता है कि जब ऐसे इंसान की जुबान से बात निकलती है तो अलका होता है, लेकिन हदीसों में नहीं तोड़ सकते कुरान, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं। तो उन्होंने ये पेशन गोई दी है कि आखिरी ज़माने में इमाम मेहदी जो फैज होगा उनका, वो नक्शबंदी का जो शेख होगा उसके साथ होगा, उस वक्त चलना है, जब तक नबी नहीं आ जाएगा, कौन हस्ती ईसा अलैहिस्सलाम, वो तो नबी आ जाएगा ना, फिर तो वो बात होगा फैज में, इमाम मेहंदी तक जो चलेगा रूहानी सिलसिला सारा किसका चलना है, इमाम मेहंदी खुद भी नक्शबंदी होंगे, ये पेशन गोई है, मुक्तुबाद में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब अब जमाना जो जितना भी आ रहे हैं ना, किसका जमाना है, नक्शबंदी जमाना है, इसके अकार, इसके अवाद, इसकी तरह चीजें, इसको एक्सेप्ट कर लो, जो अंदाजा अब है ना जिक्र का इस्लाह के लिए, ये है असल, अब ये चलेगा क्यामत तक, मराकबात इसमें साथ नफीस बात की तर्स बदल गई, इसको चलना है, समझा की बात, चले आज का दर्श इतनी काफी इंशाल्लाह, हम मराकबा करते हैं अल्लाह के फजल से, हाँ बंद करें दिल की तरफ तो जा फरमाए, अल्लाह से फैज तलब करें, सबसे पहले इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह ताला जो हमसे बेअदबी हुई है इस हल्के में आने के लिए, अपने दिलों को साफ करें, कोई किनारा नहीं चाहिए यहाँ पर किसी के साथ भी, शेख के साथ बिल्कुल चाहिए, इस्तग़फ़ार करें, अगर आ रहा है ख्याल उठ के चले जाए कि मैं इस मैसेज के काबिल नहीं हूँ, मेरी गिरफ्त ना हो जाए, याद रखें, बगैर तौबा के दिल को साफ किए किसी शेख के सामने मत बैठे हैं, तो इस्तग़फ़ार करें, तो अल्लाह ताला मैं माफ़ी मांगता हूँ, हज़ार माफ़ी, करोड़ माफ़ी, मैं यहाँ से फैसले लिए बगैर नहीं जाऊँगा, तो मैं जो भी मैंने गुस्ताखी की है, बेअदबी की है, हमेशा एहतसाब फैज से पहले, मराकबे से पहले मांग लेनी चाहिए चीज़, दिल को साफ़ कर लेना चाहिए, कि शैतान की तोड़ है, बिल्कुल क्लीन करके इस चीज़ के सामने बैठ के इसके वास्ते से मैं मांग रहा हूँ, और जितना भी फैज मुझे पहुँचेगा इसके ज़रिए से पहुँचेगा, मैं क्यों बस डब्बा हूँ यहाँ, अगर मैंने इसी के खिलाफ वसवसे रखे हुए हैं, इसी के खिलाफ मैंने ख्यालात रखे हुए हैं, इसी की मेरे दिल में इज्जत नहीं है, तो मुझे क्या मिलना है, चल भाई जा बस से सो आराम से, दुकान खोल सुबह में जाके, तेरा यहाँ काम नहीं है, समझाई बात, तो पहले अपने दिल को टटोलने की, जिस आदमी से फैज लेना चाहता हूँ, खैरात मांग रहा हूँ मैं, इसके साथ मेरी नस्बत क्या है, How much I stand listening to them? How much my heart and mind is clear with this person? If anything, in my sight, Allah, maaf karo mujhe. मैं उससे फैज लेना चाहता हूँ तो मैं फैज कैसे लूँ? तो पहले तौबा माफ़ी करके बेदबियों से हर चीज़ से अल्लाह माफ़ी, फिर दूसरी चीज़ अल्लाह ताला मेरी मोहब्बत बढ़ाए इससे, क्योंकि इक्तसाब फैज जब तक नहीं होता जब तक मोहब्बत ना हो। हर आदमी को जब मराकबे में जाएगा उसको उतनी मिलेगा जितनी उसको मोहब्बत है। शेख देता नहीं, शेख से लिया जाता है। तो आपके आपका बर्तन जितना बड़ा होगा उतना ही ले जाएंगे आप। कोई सोता चला जाएगा, घूंगता चला जाएगा, करोड़ों दर रहेगा, कोई बाना माल होकर चला जाएगा। अलहमदिल्ला मैं सुना अक्सर आज की हजरत औरतें कहती हजरत आज की तो मराख में बड़ा मजा है। मैं कैसे मजा है? बड़ा नूरानी था जी आज का मराखबा। हालांकि वही मराखबा था, यहाँ बहुत से लोग पता ही आज मराखबा की वजह कि इनमें मोहब्बत उसमें बड़ी है, उसमें मोहब्बत कम है। उसका बर्तन बहुत बड़ा था। जितना बर्तन बड़ा लेके आएंगे आप उसी बर्तन को भड़के ले जाएंगे आप। और कौन सा बर्तन है ये? यहाँ मोहब्बत का बर्तन है। पहली चीज शेख के खिलाफ तमाम चीज़ों से माफ़ी, बेदमी से माफ़ी। दूसरी चीज अब आपने फैज लेना है तो उसके लिए बर्तन लाए अपना। जितनी मोहब्बत होगी ऐसे फिर उसी अल्लाह से पहले ये दुआ मांगे अल्लाह ताला इस शख्स के दिल को मेरे दिल से मिला दे, इसकी रूह को मेरी रूह से मिला दे। या अल्लाह मुझे फना फिक्र दे इसकी ज़ात के अंदर, ये मैं हूँ मैं ये हूँ। कितनी प्यारी दुआएं देखे, बस मेरे अंदर वो हो, इतनी मोहब्बत मुझे उसके इंसान के साथ ना दे। कोई रिया ना हो, कोई चीज़ ना हो, हर चीज़ को लाजूँ तकूँ वहब्बाला ही मेरे वल दिमाग उस पोजिशन मुझे बचा दे। ये बर्तन आपका इतना बड़ा हो गया अलहमदिल्ला। अब फैज देने वाली कौन ज़ात है? वो अल्लाह है। शेख से नहीं देता, वो कहे डाल दो भाई इसके बर्तन में, थ्रू इसके शेख के बड़ा बर्तन ले गया है, पहुँचाओ फैज इसको। लक्ष्मण थी भर भर के आएगा फैज आपको इसका। माशाल्लाह हजरत अबू बकर सद्दीक का, सलमान फारसी का, हजरत जाफर सादिक का, बाजिद बस्तानी का, हजरत शेख अरकानी का, हजरत फखर अहमद का, हजरत बहाउद्दीन का, हजरत दोस्त मोहम्मद का, साजुद्दीन का, हजरत फजल कशी का, हजरत अली मुर्तजा का और इस फकीर का। अच्छी बात है ना, रोशनी आई दिल के अंदर। अब देखे मराखबे में कितना मजा आएगा है ना जी। अब सोचता है इतनी देर से पहले क्यों नहीं आया, हम लटूकता घूमते फिरते रहे। कितना शहर का आके फैज हासिल करते हैं, कितने बेवकूफ हैं। फिर आदमी कोसते हैं अपने आप, यार हम तो जिंदगी जाया कर दी। अगर हम 50 साल ये काम किया होता, हम कहाँ से कहाँ होते आखिरत में सोचिए। और ये काम आपने 50 साल किया होता कहाँ होते? कितना वक्त करते हैं नफ्स इंसान का जाया, आप सोचिए सर कितना शैतान। कहाँ ये मजमे, ये शेख, ये आते हैं, ये चीजें, और कहाँ बकवासबाजी में लगा दी उसने दुनिया हर बात। बकवास इबादत, बकवास मजमे, बकवास तकीरें, बकवास बिद्दतें, जुल्मतें, कुछ भी नहीं हुआ। खाना पीना वहां ठोक दिया उसको, सब आशिक नजर आ रहे हैं उसको। ये शैतान के चक्कर है। इस पर शुक्र है अल्लाह ने कि अब करते हैं जिक्र का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसको पक्का याद रखना। और ये सुनते रहे, हम भी लगा देंगे साथ ही आपको माशाल्लाह। वो बड़ा तेज काम कर रहे हैं आपके लिए माशाल्लाह। सुना करें 2-3 दफ़ा रोज़ का बयान ना, ताकि उसमें और तकलीफ पहुँच जाए। सो स्पीक मोस्टली इन उर्दू, आई नो सम पीपल आर सिटिंग नॉट अंडरस्टैंड उर्दू। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड? हाउ मच? 100%? हाथ खड़ा करो। चलो फिर तो मैं वक्त ज़ाया नहीं किया आपका, अदर आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। चलो शुक्रिया, जिसमें दाखिल।